वास्मि तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति दिव्यं राधे तं मनां करोमि। गुरु परंपरा लिखा इसके बाद वाला, इसके बाद में उन्होंने लिया स्वर्ग दामोदर, उसके बाद में रूप सनातन, इसके बाद में जीव रघुनाथ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, उसके बाद में लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी, और उसके बाद में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। इसको कहते हैं भागवत परंपरा, भागवत गुरु परंपरा, और एक होता है शिष्य परंपरा। इन्होंने गुरु परंपरा ग्रहण किया, भागवत गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा नहीं। शिष्य परंपरा उसको कहते हैं और गुरु परंपरा भागवत परंपरा कहते हैं। भागवत परंपरा में सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध लोग, और आचार प्रचार करने वाले आदर्श गुरु वर्गों को ही उसमें लिया गया। इसमें असिद्ध नहीं है कोई। यदि ब्रह्मा से आज तक रखा जाए तो शिष्य परिशिष्य में हम समझते हैं कि 10,000 ग्रंथ भी लिखे जाएं, केवल शिष्य परमंत्र नाम उसमें नहीं आए असिद्ध वाले। जैसे हम लोगों के गुरु महाराज जी हैं, हम लोगों के गुरु महाराज जी के कितने शिष्य हैं, वो तो सभी शिष्य है ना। अब उनके शिष्य और शिष्य का शिष्य प्रशिष्य और उसका भी शिष्य यदि रखा जाए तो कितना लगेगा, लिखने में कहीं अटेगा ही नहीं। इसके बीच में कभी कभी हो सकता है 4-5 परंपरा आप पीछे एक कोई सिद्ध महात्मा आया, तो बीच में जो असिद्ध है उसको खत्म करके उसके बाद में उन्हीं को लिया जाएगा, और नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्ध गुरु परंपरा को, भागवत परंपरा को उन्होंने ग्रहण किया, जिनके आचार विचार सभी शुद्ध हैं, भजन परायण हैं, जो लोग जगत की शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के बाद में कितने सब लोग हुए, और अद्वैताचार्य के पुत्र उसमें केवल एक को लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। वो लोग आज तक उस वंश परंपरा में आने वाले को सभी को आचार्य और गोस्वामी कहते हैं, चाहे वो भ्रष्ट हो। प्रभुपाद जी ने इसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए गोस्वामी वही है, आचार्य वही है, गुरु परंपरा में वही आ सकता है जिनके आचार विचार शुद्ध हो और शुद्ध रूप से भक्ति का आचरण किया हुआ हो, वही लोगों को नाम दिया। शिष्य परंपरा उसको कहते हैं जो कोई गुरु है, जैसे गौर किशोर दास द्वारा प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके एकमात्र शिष्य मैं हूं, एकमात्र मैं शिष्य हूं। और वहां के जितने बाबा जी थे वो लोग कह रहे थे कि हम लोग भी गौर किशोर दास महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि इनका श्री कलवर छुओ तो देखें जल करके भस्म हो जाएगा, ये तो ब्रह्मचारी, आबाल्य ब्रह्मचारी थे। तुम लोग कितना ब्रह्मचारी आदमी है जरा देखें तो कोई नहीं उठा। इसलिए गुरु परंपरा में वो लोग का नाम नहीं आएगा। ये लोग खोजते हैं आजकल के सजिया बाबा जी और लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी किससे बेच लिया, उनके गुरु जी ने किससे बेच लिया, उनके गुरु जी ने किससे बेच लिया। चाहे असिद्ध हो, चाहे परंपरा में आए, न करे भजन, करे न करे, उसे जोड़ना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा जोड़ना से भजन नहीं होगा। रूप गोस्वामी का जो विचार लेगा वो तो उनके बाद में रहेगा, जो नहीं लिया दूसरा लोगों ने तो उनका शिष्य झूठ मूठ का नाम और मंत्र लेने से भी उनका शिष्य नहीं है। बहुत ऐसे कितने रूप कवि इत्यादि हुए जिसको जाह्नवा देवी ने संप्रदाय से ही अलग कर दिया, उसको ग्रहण ही नहीं किया। उसी तरह से अद्वैताचार्य के सब शिष्य हैं, सहजिया लोग सब क्या है, किसी न किसी रूप में वो जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं गौतुशो दासोबाजी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संबंध है, जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का और भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संबंध है। ये लोग कहते हैं उनको दीक्षा मंत्र दिया, उनको भेष दिया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को, तो कैसे हो गए। जिसको हृदय ग्रहण किया, जिनकी शिक्षा और आचार विचार को लेकर के चलते हैं वही यथार्थ उसका गुरु है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो उनके लौकिक कुल गुरु थे विपिन, उनका ग्रहण नहीं किया। किसका विचार ग्रहण किया, जगन्नाथ दास महाराज जी का, और वो भी 144 वर्ष तक इस महापुरुष के लिए प्रकट थे। और उनका जितना विचार धारा शास्त्र विचार उपासना पद्धति ये सब कुछ उनसे ग्रहण किया और उनको गुरु के रूप में माना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने जगन्नाथ जी का उत्तराधिकारी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को, और इन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके गौतुशो दासवाज महाराज जी को हरिकथा सुनाई। यद्यपि इन्होंने बेश नहीं दिया उनको गौरकिशोर दासराज महाराज, किंतु कपड़े देने की अपेक्षा विचार की प्रधानता है ना कपड़े की प्रधानता है, विचारधारा की प्रधानता है। इसी को कहते हैं भागवत गुरु परंपरा। और केवल कपड़ा और गले में कंठी देने का नाम, चाहे वो माने और न माने, इसको कहते हैं शिष्य परंपरा। इसलिए प्रभुपाद जी ने शिष्य परंपरा को ग्रहण नहीं कर करके भागवत गुरु परंपरा ग्रहण। वो कहते हैं जो गौरकिशोर दास महाराज जी ने इनको बाबा जी वेश नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया बाबा जी वेश नहीं दिया, सखी नहीं, सखी नाम नहीं दिया, इसलिए यह सिद्ध है। इसलिए गौरकिशोर दास महाराज के ये शिष्य नहीं है और सिद्ध प्रणाली इनको नहीं दी। सिद्ध प्रणाली किसको कहते हैं, सिद्ध प्रणाली है वो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। ये सिद्ध प्रणाली प्रभुपाद जी ने माना। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को जो ग्रहण करेंगे इसके बिना नाम नहीं हो सकता, सिद्ध भाव आना तो बहुत दूर रहे, भाव ही नहीं आएगा। जो जिसको कहते हैं विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व, ललिता जी की कृपा से सिद्ध देह होगा, ललिता सखी या कब सिद्ध देह दिए, सिद्ध देह दिया किसके लिए कह रहे हैं, ललिता जी के लिए कह रहे हैं या श्रीमती विश्वानु नंदिनी के लिए कह रहे हैं, ये कृपा करके हाँ राधा कृपा बोले कबे बाव लभी, राधा जी की कृपा से वो हम लाभ करें। केवल वो मंत्र दे दिया झूठ मूठ का और खुद ही नहीं है, उनको सिद्ध शरीर की प्राप्ति नहीं हुई तो वो सिद्ध देह नहीं होगा। तो सिद्ध देह का मतलब है ये चार गुण होने चाहिए, ये चार गुण जिन लोगों ने ग्रहण किए, तृणादपि सुनी चेन परोरपि सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीय स्वभा, तब वो कीर्तन करेगा और कीर्तन प्रभावे प्रभावे स्मरण होगी। स्मरण मैंने क्या, अष्टकाली लीला, और तब उसमें अपनी सखी देह का चिंतन करके और तब ये भजन में आएगा। ये सब सिद्ध प्रणालियां हैं। और आपसे जैसे व्यक्ति अनाचारी दुराचारी व्यक्ति आसलो, अनाचारी दुराचारी सिद्धांत ज्ञानहीन भक्तिहीन ग्रामेर एकेबारे गमार बोलो जैसे गुरुदेव आमाके सखी भाव दे, एक दिन लागबे ना ताड़ाताड़ी करे जे अन्य कोनो लोग ना एके बाबाजी बेच दिए दे, एजने संगे संगे गोपने ते निये ताके तुमी ललिता सखी तुमी विशाखा सखी बोले दिबे आर दूर कफिन दिए दिबे मंत्र दिए दिबे एचे ओ दे। ওরা বলবে যে সে আমার গুরু ছিলেন অমুক মঞ্জারি, উনার গুরু ছিলেন অমুক মঞ্জারি, আর এই রকম সম্বন্ধ। আমাদের রূপ গোস্বামীকে কে মঞ্জারি ভাব দিয়েছিল, চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছিলেন, কোথাও লেখা আছে? সনাতন গোস্বামীকে কে দিয়েছিল মঞ্জারি ভাব? কোন সিদ্ধ প্রণালী উনার সময় ছিল কিনা, কোন ছিল সিদ্ধ প্রণালী? এই বর্তমানে যারা বলছে বর্তমানে যে করে সিদ্ধ প্রণালী ও সব সিদ্ধ প্রণালী সব কিছু নাই। ইয়ে হুয়া হয় কব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কে বাদ মেয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ কে বাদ মেয়ে ইয়ে সব সহজিয়া ভাব, এসব সিদ্ধ প্রণালী কি বাত নেই। সিদ্ধ প্রণালী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নে জৈব ধর্ম মে লিখা হয় যে এসে হতা হয়। কিতনা দীক্ষা দিয়া সাথে সাথ মে উনকো गौर नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन हुआ। इसके बाद में नवदीप ने बाबा जी के यहाँ रह करके दशमूल इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की। तब उनके गुरु जी ने कहा जे जाओ गोपाल गुरु हैं और गोपाल गुरु के शिष्य ध्यानचंद्र हैं उनके पास में जाओ। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर कितने दिन तक सीखा रहे और उन लोगों की कृपा से वो भाव की स्फूर्ति हुई और तब उसमें वो प्रविष्ट हुए। ये सब सिद्ध प्रणाली उसी को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिया। ये किसी के लेने देने की बात नहीं है, भजन के प्रभाव से गुरु उसके हृदय में सिद्ध देह इत्यादि प्रकाश करता है। कोई वो ये नहीं है, कल्पना नहीं है, वो कल्पना का उपसार। इसलिए ये सब सिद्ध प्रणाली है। ये जो कहते हैं वो सिद्ध, जैसे तैसे आ गया गमार अन्नाचारी बेबीचारी कुछ भी नहीं जानता है सिद्धांत के समय। तुम लोग सब रहता ना तो तुम लोगों को भी बाबा जी देश दे करके सखी बना देते, सखी। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं इनको ब्रह्मचारी का वेश दिया जाना चाहिए, वर्णाश्रम के अंतर्गत में रहे, संन्यास भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, इसलिए इनको देना चाहिए। देने के बाद में इनमें से जो होंगे उन लोगों को दिया जाए वो सब देश और वो सब प्रणाली जो योग्य हो। कोटि कोटि में से एक आदमी होगा ऐसा सिद्ध प्रणाली में आने वाला, जहां तहां बिखेर देने से ऐसे ही नहीं होता। इसलिए वो लोग सब व्यभिचारी बन गए। प्रभुपाद जी ने यह धारा किया जिससे इसमें से कोई निकल करके तब एक बिरला ही आदमी इसके तरफ में आएगा। इसलिए मध्वर जाति की परंपरा में हम देखते हैं कि उनके चार मठ हैं उड़ुपी में प्रधान, और एक एक मठ में दो दो सन्यासी रहते हैं सब समय। एक यदि अप्रकट हो गया तो फिर साथ ही साथ में उनको नॉमिनेशन करके उनको कर दिया जाएगा। और वो सन्यासी लोग वही जो हम लोगों का सन्यास मंत्र है गोपी भाव, उसी रूप में वो लोग भजन करते हैं। अप्रकट हो जाकर एक अपने स्थान पर और कर लेंगे, किंतु किसी दूसरे ब्रह्मचारी को या सन्यासी को या गृहस्थ को वो मंत्र नहीं देंगे, बस वही आठ के आठ रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी वहां गए रूप में अनुसंधान किया, जी सचमुच में मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम लोगों का कहां तक संबंध है, तो वही लेकर के आए, नोट करके उसी को सुंदरानंद विद्या विनोद उस समय थे एडिटर ऑफ गौड़ीय संपादक, उनको दिया प्रकाश करने के लिए। उन्होंने प्रकाशित करके पीछे से आचार्य मध्व नाम की एक पुस्तक लिखा। वहां तक तो प्रभुपाद के विचार ठीक दिए, और प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में जो उन्होंने आचार्य मध्व अथवा एक और पुस्तक है नहीं हम बतला रहे चैतन्य श्री चैतन्य देव, ये प्रभुपाद के समय में लिखा गया ये दोनों पुस्तक। पहले लिखा गया वो आचार्य मध्व और ये श्री चैतन्य देव बंगला में, और उसमें उन्होंने प्रभुपाद जी के विचारों को लेकर के उन लोगों से क्या हमारा संबंध है, कैसे संबंध है, ये सबको अच्छी तरह से दिखलाया। और इसके बाद में प्रभुपाद के प्रकट होने पर स्वतंत्र हो जाने के बाद में नवद्वीप में हरिदास दास और वही अनंत वासुदेव और एक चैतन्य चैतन्य राधा गोविंदना, ये सब क्लिक मिला करके उन्होंने ये प्रचारित किया कि मध्व संप्रदाय से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है, स्वतंत्र हम महाप्रभु जी स्वतंत्र वैभवाचार्य आचार्य हैं। और तब से फिर धीरे 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 कुछ लोग उनकी बातों में आकर के इसको अस्वीकार करने लगे जो हमारा संपर्क नहीं है, किंतु भक्त विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद और कितने गौड़ीय वैष्णव हैं, राधारमण के गोस्वामी आज से 150-200 वर्ष पहले उनका राधारमण चरण उनका नाम था, उन्हीं के वंश में मधुसूदन गोस्वामी और ये सब हुए हैं। आज से करीब 150 वर्ष पहले हरिश्चंद्र थे काशी के, उनके शमशानी तो उन्होंने चैतन्य चैतन्य की हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी पद तैयार हो, और उन्होंने गुरु परंपरा लिखा है, वो ठीक वैसा ही परंपरा लिखा है जैसे कि कवि कर्णपुर ने और हमारे बलदेव विद्याभूषण जी ने जो परंपरा है उसी को स्वीकार किया। राधारमण चरण दास ने, राधारमण क्या नाम है तत्राड़ी जी, राधा चरण गोस्वामी, उन्हीं की वंश परंपरा में अब इसमें से ही आधुनिक काल में बहुत से वहां पर गोस्वामी लोग हैं, उन गोस्वामी से एक पुरुषोत्तम गोस्वामी और उनके लड़के हैं श्री वत्सना क्या, वो लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं, और बाकी जितने हैं वो सब मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय को मानते हैं, मध्व से संप्रदाय। अभी कल एक प्रोसेशन निकला था, कहा था जी पता लगाना नहीं लगाया, जैसे करीब 250-300 आदमी मध्वाचार्य जी का लेकर के आलेख देकर के और उनका आविर्भाव तिथि मना रहे, हम लोग को पता चलता था तो हम लोग यहाँ से सब लोग मिलकर के चलते उस प्रोसेस में। तो इस तरह से गौड़ीय वैष्णवों का संपर्क हमने कल बतलाया था, ये केवल थोड़े से मतभेद के लिए ही गुरु को नहीं बदल देंगे या संप्रदाय को नहीं बदल देंगे, बहुत से कुछ विचार लेकर के मूल विचार होना चाहिए, प्रभु और दास का संबंध ये ठीक होना चाहिए, और भक्ति का विचार ठीक होना चाहिए, 9-10 मूल को ग्रहण करना चाहिए, वेद शास्त्र पुराण ही हमारे मूल प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके अनुसार में यह प्रमाणित होता है कि हरि परम तत्व है, वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उन्हीं से जीव दो प्रकार के बद्ध और मुक्त निकले हैं। बद्ध जीव संसार में पड़ा हुआ है भगवान से विमुख, और मुक्त जीव भगवान से विमुख हो भगवान की सेवा प्राप्त करके उनकी सेवा कर रहा है। जो बद्ध जीव हैं उनमें से भजन करके बद्ध मुक्त होंगे, साधन सिद्ध होंगे, और जो नित्य सिद्ध जो है तो ही है। जीवों के साथ में, जगत के साथ में भगवान का अचिंत भेदाभेद संबंध है, क्योंकि उनकी शक्ति से ये निकले हुए हैं। असल भेद अभेद ये सब जो कुछ है ये निर्भर करता है शक्ति और शक्तिमान में। जब शक्ति में भेद और अभेद होगा तो उससे प्रकृति जो चीजें हैं जीव और जगत, तटस्थ शक्ति से जीव और माया शक्ति से ये जगत प्रकटित हुआ है, प्रकटित हुआ है। तो इस तरह से इनके साथ भी वैसे ही संबंध होगा, भेद और अभेद, और ये भी अचिंत भेद अभेद होगा। अब जोर से हम बोलते पार गए, और भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र अभिधेय तत्व है। इसमें भक्ति विभिन्न होने पर भी बद्ध और आगानुगा दो प्रकार की भक्तियां हैं। इसमें भी साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति बहुत से विभाग हैं। इसमें भी मिश्रा भक्ति, शुद्धा भक्ति, औपाधिक भक्ति इत्यादि बहुत से भेद हैं। उसमें प्रधान है स्वरूप सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति और संग सिद्धा भक्ति। इन सब को जान करके शुद्धा भक्ति का अनुष्ठान करने से, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन करने से धीरे 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 भक्ति देवी का आविर्भाव होता है। निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अंत में प्रेम होता है। ये सब विचार हैं, इन विचारों को ही ग्रहण करके हम लोग भक्ति पा सकते हैं और अपने सिद्धांत में संप्रदाय में हम लोग प्रतिष्ठित हो सकते हैं। मध्वाचार्य जी का विचार लेकर के हमारे इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने दिखलाया कि कोई भी भेद नहीं है, न साधन का है न साध्य का, थोड़ा सा वैशिष्ट जरूर है किंतु भेद कहीं नहीं है। वैसे तो चारों संप्रदाय में कहीं भेद नहीं है परस्पर, किंतु फिर भी कुछ वैशिष्ट है, किंतु इनके साथ में हम लोगों का बहुत कुछ ये मिलता है। इसलिए मध्वाचार्य जी को ही हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने, उनके परिकरों ने और उनके पीछे से आने वाले लोगों ने सब उनको ही ग्रहण किया। अब अधिक बोलने से जोर से बोलना था कि मराठा की संघर
आलोचना हुई, ऐसे ही आलोचना की श्रवण कीर्तन की जरूरत, ऐसे उत्साह के साथ में तुम लोग श्रवण करो और विचार पूर्वक गंभीर विचार से उसमें सुनो और वैसा ही आचरण करो। हमारे तीन गोस्वामियों का है, मैं संक्षेप में दो एक बात कहूँगा। हमारे तीन गोस्वामियों का तिरुभाव तिथि है, बच्चों ने यह ठीक बतलाया, आविर्भाव और तिरुभाव दोनों एक ही तात्पर्य पर है। जिसके लिए आविर्भाव तिरुभाव उसकी, आविर्भाव से भी तिरुभाव का महत्व तो अधिक है, क्योंकि तिरुभाव में उनके समस्त गुण, उनके सारे उपदेश, चरित्र इत्यादि उस समय स्मरण होते हैं। इसलिए तिरुभाव में उस समय विरह उत्सव में अधिक कुछ गांधीर्य है। दूसरी बात, ये तीनों जो गोस्वामी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और तब कविराज गोस्वामी, इन तीनों के ही बात करें हम ऊपर से लेकर के प्रभुपाद तक हम विचार जब करते हैं, यद्यपि ये साधुकोचित साधन भजन भी प्रकाश करते हैं, किंतु इनका उद्देश्य क्या है भजन का? जितने भी हैं क्या उद्देश्य है? चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव लेकर के आए थे, इसलिए वो कृष्ण कृष्ण करते हैं, किंतु हमारे गोस्वामी लोग क्या करते हैं? कोई भी गोस्वामी हो जो कृष्ण के तरफ में झुके हुए हो, कोई भी साधन भजन किस लिए करते हैं? प्रेम प्रयोजन सभी करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी, और आज तक के जितने भी हैं सभी लोग आचार्य को कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन। तो वो कृष्ण जो प्रेम है, गोल कोई निर्विशेष चीज तो है नहीं, क्या चीज है? राधा जी की और कृष्ण की जो पांच प्रकार की सेवाएं बतलाई जाती है, पांच में से तीन ब्रज में, और तीनों में प्रधान किसको बतलाया? नाम सुनते मधुर रस को, गोपी के भाव को, राधा जी के भाव को। मने शिक्षा ही क्या, मने शिक्षा में तो इस बच्चे ने बतलाया, समस्त पद्यों में ही उनका उद्देश्य रागानुगा हमारी भक्ति। और जैसे राधा जी कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, ऐसे उनका कुंड भी उनका अत्यंत प्रिय है, उसका स्वरूप है राधा रानी कुंड का, इसलिए कुंड हमारे ऊपर में प्रसन्न हो माने राधा रानी, इसलिए राधा कुंड की सेवा ही हमारे जीवन की, और वहीं पर बस्ती हमारी सबसे सर्वोत्तम बस्ती है, यही उन लोगों से प्रार्थना है। राधा कुंड का श्याम कुंड और राधा कुंड होने पर भी महत्व दिया उसी का। गोपाल भट्ट जी का भी देखो, गोपाल भट्ट की कृतियों में यद्यपि हरि भक्ति विलास है, किंतु हरि भक्ति विलास उनका सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। उनका सबसे श्रेष्ठ कृति क्या है?
षट
संदर्भ की कारिकाएं, जिस पर हमारे जी गोस्वामी जी ने षट संदर्भ का बड़ा भारी महल खड़ा किया, किंतु भित्ति इत्यादि जो की थी वो सब
गोपाल
भट्ट जी गोस्वामी की थी, और उसके ऊपर में उन्होंने विभाग कर दिया विषय, और कुछ और भी श्लोक महाप्रभु और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के लेकर के उन्होंने षट संदर्भ जैसा उज्ज्वल एकदम नक्षत्र तैयार किया, जिसी के आधार पर चैतन्य चरितामृत लिखा गया। चैतन्य चरितामृत का आधारशिला क्या है? षट संदर्भ। एक आदमी ने ऐसे गुरु जी से कह दिया, समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ चैतन्य चरितामृत हो, तो वो बिगड़ गए, बिगड़ करके बोले नहीं, इसका मूल भी है, मूल है वो षट संदर्भ है, रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं। यद्यपि बीज से अंकुर और अंकुर से पेड़ और पेड़ से पौधे और फल लगते हैं, किंतु मूल चीज क्या है?
बीज।
वो बीज है, बीज ना रहे तो ये पेड़ ही नहीं होगा, इसलिए बीज की प्रधानता सब समय माननी पड़ेगी। इसलिए कृष्ण ये गोपाल भट्ट जी की सर्वश्रेष्ठ कृति, ये सत्संग इत्यादि की, ये सब
भित्ति स्थापन करना है जिसके ऊपर में जीव उस अमी में ये सब भक्ति भक्ति हरि भक्ति विलास गृहस्थों के लिए बनाया गया, त्यागी लोगों के लिए नहीं बनाया गया, बैरागी लोगों के लिए नहीं, किंतु बैरागी लोगों की उसमें श्रेष्ठ अंतिम बिंदु तक उसमें निष्ठा रहनी चाहिए त्यागी लोगों की, क्योंकि त्यागी लोग इसको करके तब पीछे आएंगे, वैराग्य स्थिति में आएंगे। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा गया उपदेशामृत के ये 5-6 श्लोक जो पहले वाले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि ये गृहस्थों के लिए, किंतु हाँ ये होगा वैराग्यों में क्या होगा, उनके जीवन में ये सब प्रतिष्ठित रहेगा चरम सीमा तक, क्योंकि उन्हीं में ये सब शिक्षा करेंगे। इसलिए श्री विग्रह सेवा और जो जितने ये सब व्रत त्योहार इत्यादि किए हैं इनका मूल उद्देश्य क्या है, कृष्ण के प्रति सेवा में लोभ उत्पन्न हो। यदि राधा और कृष्ण के राधा माधव के प्रेम में उनका लोभ नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार का हो जाएगा। इसलिए मूल तत्व वो है, इसलिए लोभ उत्पन्न कराने के लिए ये सब किए गए। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए और जो त्यागी भक्त जो गृहस्थों जैसे ही हैं, बहुत से ऐसे त्यागी बहुत से क्या हम समझ लें 99% लोग ऐसे ही हैं जो कि उस अधिकार के अनुसार में गृह नहीं छोड़ा, उसी में रहते हुए ही घर को छोड़ दिया। इसलिए सभी लोगों के लिए हरि हरि भक्ति विलास ग्रहण करना चाहिए, उसके विचार होना चाहिए, ठीक से उसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए। एकादशी इत्यादि व्रत का जैसे बच्चे ने कहा कि ये सब चीज को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु एकादशी इत्यादि का मूल उद्देश्य जैसे साधारण समाज में स्मार्ट समाज में एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं और सब व्रत करते हैं, ठाकुर जी का अर्चन भजन करते हैं, दीक्षा होती है, वैसे हम लोगों में नहीं है। हम लोगों का मूल उद्देश्य जैसे मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने और हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने सारे पुस्तकों में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसे ही अपने सारे ग्रंथों में जैव धर्म लिखा, किंतु अंतिम बिंदु लेकर के कहाँ लेकर के छोड़ा, राधा गोपाल की पाल्य दासी के रूप में किया। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ने से कोई भी विश्व का ऐसा आदमी नहीं है जो अच्छी तरह से वो पढ़े और उनको राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं होगा, ये कदापि हो नहीं सकता। यदि नहीं होता है तो वो न तो साधन किया न भजन किया। कहते हैं सफल साधन श्रेष्ठ एक पंचम कृष्ण प्रेम जन्माय एक पांचे, वो जरूर होगा वैष्णव के रसिक वैष्णव के साथ में, तत्वज्ञ वैष्णव के साथ में, हमारे संप्रदाय के किसी भी तत्वज्ञ वैष्णव के साथ में, उनके अनुगत में कोई भजन करेगा और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम सेवा में उनका लोभ नहीं होगा, ये कदापि हो नहीं सकता। इसलिए इसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है, निसंशय होकर के हम भजन करके उसी उद्देश्य को अभी से वो उद्देश्य एम ऑब्जेक्ट रख करके हम जितना भी साधन भजन वैष्णव का चरित्र आलोचना इत्यादि करेंगे जरूर हम लोग उसके यही उद्देश्य रख करके हम लोगों को चलना है, कभी भी इसमें संशय इत्यादि की बात मत करो। हाँ यदि वैसे लोग वैसा कहते हैं तो चुपचाप सुन, बस इतना ही करो, गुरुजन भी कहते हैं सुन लो, किंतु हम लोगों को उद्देश्य जीवन का यही राधा कृष्ण की प्रेम सभा ही हमारे जीवन का उद्देश्य। चैतन्य चेतामृत भी देख लो, कृष्णदास कबीरा गोस्वामी ने किया, रघुनाथ दास जीवन का जीवन चरित्र देखो, प्रारंभ से ही उन्होंने महाप्रभु का जब संग पाया और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु का संग पाया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका संसार दूर हो गया और महाप्रभु के चरणों को अनायास ही पा लिया, बहुत जल्दी से पाया और उसके बाद में इतना वैराग्य इतना कठोरता उनके भजन में, किंतु उनके भजन का चरम लक्ष्य क्या किया दिखाया, उन्होंने दिखाया विलाप कुष्मांजलि इत्यादि में दिखलाया तवई वास्मी तवई वास्मी नजवामी त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं और पादाब्जयो
तव बिना वरदास्यमेव नन्नत कदापि समये किल देवी जाते सखायते मम नमस्त नमस्त नित्यम दास्यायते किसके लिए राधा जी के लिए। और अभी जो श्लोक प्रेमानंद जी यहाँ पर बोल रहा था तांबूल अर्पण पाचन कृष्ण के लिए नहीं, वृंदावन में है स्वरिंग सखी प्रति दोस्तों से अंति प्रिया, वृंदावन की विशेष जो वृंदावनेश्वरी हैं उनके संतोष के लिए ये सब, उनकी प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए ये सब करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए, तब कृष्ण शहर में मिलेंगे। इसलिए जहां भी देखो इसके अतिरिक्त हमारे गोस्वामियों का कोई भी उद्देश्य नहीं। यदि वैदिक भक्ति से वो गोपाल भट्ट जी वहां तक पहुंच जाते जो शालग्राम शिला भी उनके प्रेम में उनके विरह से वो राधारमण जी के रूप में प्रकट हो गए। हाँ किंतु वो बात हम लोगों को अमान्य है। क्या महाप्रभु जी, हाँ राधा और कृष्ण, राधा रमण ये ठीक दोनों मिले हुए हैं इसलिए वो महाप्रभु जी है, मिलित तनु है, किंतु
कृष्ण जी राधा जी के लिए कुआं फेंक देंगे,
अलग छोड़ करके राधा जी को कुएं में फेंक देंगे और कहेंगे जी नहीं है राधा रमण मैं हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो कहेंगे देखो राधा और रमण जी दोनों मिलकर के, राधा और राधा रमण दोनों मिलकर के ऐसा इस तरह से हो सकता, ऐसा ही होना चाहिए। इसे खुद विचार करके लोगों की बात, वृंदावन में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सबकी बातों को सुन करके हम रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की कसौटी पर कसेंगे, कस करके दब देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर की कसौटी पर, जबकि खरा उतारता है तो उसको ग्रहण करेंगे और नहीं तो उनको प्रणाम कर लेंगे बस। आज रात बहुत हो गई, अब 7 बजने वाला है, अब कल जो बाकी रह गए हैं ये सब लोग कला चांदी हैं नवीन, हम लोगों ने इन गोस्वामियों के जीवन चरित्र के संबंध में आज कल से और आज तक सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था और किस तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त हुए, ये चीज देखना है। वो लोग भी घर छोड़ करके इसी तरह से भजन किया हमारे तरह, और कभी उनको निराशा नहीं रही। उत्तरोत्तर बढ़ते गए, किस तरह से उनके जीवन का उद्देश्य था राधा कृष्ण जुगल की सेवा की प्राप्ति, जैसे रूप गोस्वामी ने किया था चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार, कैसे भजन किया और किस प्रकार से भजन करते 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 उनकी कितनी स्थितियां हुई और अंत में कैसे किस रूप में उन्होंने पाया। यदि हमारे जीवन में ये सब जानने की लालसा हो तो हम पहले स्थिर करेंगे कि हमको क्या चाहिए, प्रयोजन क्या हमारा है, और इसके बाद में हम स्थिर करेंगे कि हम किस उपाय से उस चीज को पा सकते हैं। हमारे किसी भी गुरुस्वामी लोगों को देखो उनमें दृढ़ निष्ठा है, करेंगे या मरेंगे, उनका वो उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु जी के आचरित और प्राचारित विमल कृष्ण अथवा राधा प्रभु, उसके लिए क्या उन्होंने किया, प्रारंभिक स्थिति से वैदिक भक्ति के अत्यंत निम्न प्रदेश से आरंभ करके और कहां भक्ति के उच्च सोपान उत्तम महाभागवत जैसे प्रेम तक उन्होंने दिखलाया अपने जीवन, कैसे वैराग्य होना चाहिए विषय के, कैसे कभी नमक तक अपने मुख में नहीं दिया कभी, ग्राम में कथा कभी जीवन में नहीं बोला, किसी लिए भी किसी भी प्रकार से विषयों के लिए लड़ाई नहीं की, हम लोगों की लड़ाई इसीलिए होती है विषयों के, किंतु उनके लिए ये समस्या ही नहीं रही कभी। लड़ाई होती है विषय के लिए, अपने भोग और लालसा इत्यादि के लिए, उनको कुछ था ही नहीं, इसलिए कभी लड़ाई नहीं। इसलिए किस प्रकार से रह करके उन्होंने भजन किया आप लोगों ने सब अभी बतलाया, वैसे ही आप लोग निष्ठा के साथ में सरल हृदय से उन चीजों को ग्रहण करने की चेष्टा करें, जैसे उन्होंने साधन किया था। कैसे साधन किया है ये पहले जानना होगा, इसके बाद में वो साधन करके कैसे उन्नत हुए, कैसे उनको स्वाभाविक वैराग्य हुआ, कैसे उनकी कृष्ण में अथवा राधा जी में निष्ठा हुई, इन सी चीजों को आप लोग यदि ग्रहण करेंगे, क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, ये उपदेशामृत इत्यादि के द्वारा दिखलाया है। रघुनाथ दास जी का जीवन चरित्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवन चरित्र और गोपाल भट्ट जीवन का जीवन चरित्र ऐसे विदीप्यमान चरित्रों से भरा हुआ, आप लोगों से शिक्षा कीजिए और सच सच में उनके जीवन का अनुसरण करके भगवान भजन पथ में अग्रसर। यदि अवकाश रहेगा कल हम लोग, तो फिर हम लोग इस विषय में अनुशीलन करेंगे। अभी ये एक बेटी कीर्तन करेगी, कार्तिक व्रत आरंभ होगा, उस दिन से परवल परवल सीम बरबटी बैंगन इत्यादि कुछ नहीं लेना है, सरसों का तेल भी नहीं लेना। नियमित रूप में प्रतिदिन संख्या बढ़ा करके हरिनाम करना है, ये सब प्राण है उसका, नहीं खाना ये ऊपर का चीज, और भीतर में है भजन। नियमित रूप में हम श्रवण कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, साथ साथ में हम लोग ब्रज में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो मुख्य स्थान हैं जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भजन किया था, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीला संज्ञाएँ उसमें हम जाएंगे। जो जो जाना चाहता है या चाहती हैं पहले से नाम दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग एक वर्ष के करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी हमारे हैं, और जो जाना चाहेगा तो पहले से लिखवा देंगे, नहीं तो जिस दिन जाएंगे उस दिन भीड़ होगी तो हम नहीं ले सकेंगे, और उस समय मन नहीं खराब करना। श्री कृष्ण चैतन्यम अमुम प्रपत्ते जहाँ कृपा गुणे थे गृहांधकों को हित भंगी पूर्वक जिन्हें कृपा करे रघुनाथ गोस्वामी के द्वार पर स्वरूप निकट ताके अर्पण करे ताके अंतरंग भक्त करिया से कृष्ण चैतन्य चरणे हमें कीरकम होते चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुग्रह करें गृह अंधकु हईते बाहर करे आ तार नित्य परिकर स्वरूप दामोदर के अर्पण करके कम है भक्ति तो समृद्ध करे आर महाप्रभु पाद पद में ताके पुष्पांजलि उनके अर्पित करे भक्ति भंडार सब ताके अर्पण करे से चैतन्य महाप्रभु चरण के अनेक चैतन्य महाप्रभु एक पूर्व जो समस्त लीला वर्णन करा महाप्रभु वर्णन का वर्णन किया गया। उस समय में रामानंद की कथा स्वरूप का गान विरह वेदनाएं प्रभु रखे पर विरह वेदना में उनके प्राण किसी प्रकार से रखते थे इसका पीछे वर्णन किया।
दीन प्रभु नाना संगे हय अन्य मन, दूसरे लोगों के संग से महाप्रभु जी का मन दूसरी तरफ में लग जाता है, किंतु रात्र काल में उनकी तेरह वेदना एकदम बढ़ जाती है। तारसुख हेतु संग रहे दुनिया कृष्ण रस श्लोक गीते करें स्नान, महाप्रभु जी के रात में उनके साथ ही में रह जाते और उनकी विरह भावना को शांत करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बात कह रहे हैं, सुबल जैसे पूर्वे कृष्ण सुखे सहाय, सुबल साधारण आदमी पढ़ करके क्या समझेगा, खास पत्थर कुछ नहीं समझेगा, समझेगा कुछ ये क्या लिखा है इसमें। सुबल जैसे पूर्वे कृष्ण सुखे सहाय गौर सुख दान हेतु तैसे राम राय, सुबल जी कैसे कृष्ण को सांत्वना देते थे, कैसे सांत्वना देते, वैसे ही राय रामानंद जी को। तो इसका मतलब यही ये कह रहे हैं कि ये सुबल सखा ही राय रामानंद जी का पार्ट अदा, इसलिए कोई कोई कहते हैं कि राय रामानंद नहीं ये सुबल सखा भी है, अर्जुन सखा भी है, अर्जुन माने ये अर्जुन, अर्जुन लवंग वाले
ब्रज वाले
ब्रज और पूर्व जी छे राधा ललिता सहाय प्रधान तैसे तो स्वरूप गोस्वामी राखे प्रभु पाण, और जैसे ललिता जी हैं ऐसे स्वरूप जी महाप्रभु जी के प्राण हो सकते। तो सुबल कैसे क्या करते हैं, जबकि दोनों में अनबन हो जाती है, खटपट हो जाता है, उस समय में महाप्रभु चिंता कर रहे हैं